ये आकाशवाणी है। अब आप फरहतनाज से समाचार सुनिए। पहलगाम आतंकी हमले के बाद आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर पर भारत के राजनयिक वैश्विक संपर्क के लिए गठित 7 सर्वदलीय शिष्टमंडल में से पहला शिष्टमंडल आज 4 देशों के लिए रवाना हो रहा है। शिवसेना के सांसद श्रीकांत शिंदे के नेतृत्व में ये प्रतिनिधिमंडल संयुक्त अरब अमीरात, लाइबेरिया, कांगो और सियेरा लियोन जाएगा। जनता दल यूनाइटेड के सांसद संजय झा और डीएमके पार्टी सांसद कनिमोई के नेतृत्व में 2 प्रतिनिधिमंडल कल इंडोनेशिया, मलेशिया, कोरिया, जापान और सिंगापुर तथा स्पेन, यूनान, स्लोवेनिया, लात्विया और रूस के लिए रवाना होंगे। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कल नई दिल्ली में संसद भवन में इन तीनों शिष्टमंडल के सदस्यों को भारत के कूटनीतिक दृष्टिकोण की जानकारी दी। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में श्रीकांत सिंधे ने कहा कि प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों को भारत में हुए पिछले आतंकवादी हमलों की जानकारी के साथ ये भी बताया गया पाकिस्तान किस तरह सीमा पार से आतंकवाद को बढ़ावा देता रहा है।
जिस देश में हम लोग जा रहे हैं किस प्रकार से भारत का स्टैंड पक्ष वहां पर रखना है और जिस तरीके से भारत इतने सालों तक टेररिज्म से लड़ता है, जिस तरीके से पाकिस्तान भारत पर हमले करता है, टेररिज्म को बढ़ावा देने का काम कर रहा है, अलग अलग टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को पनाह देने का काम कर रहा है, पाकिस्तान जिस प्रकार से ये कारनामे इतने सालों तक कर रहा है वो पूरी दुनिया को भी पता होना बहुत जरूरी है।
दूसरे शिष्टमंडल का नेतृत्व कर रहे संजय झा ने बताया कि 5 देशों की यात्रा के दौरान वे पाकिस्तान द्वारा भारत में दशकों से चलाए जा रहे आतंकवाद का उल्लेख करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि स्वस्थ दुनिया का भविष्य समावेशी और एकीकृत दृष्टिकोण तथा परस्पर सहयोग पर निर्भर करता है। स्विट्जरलैंड के जिनेवा में आयोजित विश्व स्वास्थ्य सभा के सत्र को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए उन्होंने विकासशील देशों के विशेष रूप से स्वास्थ्य चुनौतियों से प्रभावित होने का जिक्र किया और कहा कि इससे निपटने के लिए भारत का दृष्टिकोण एक अनुकरणीय मानक और टिकाऊ मॉडल प्रदान करता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने देशभर में स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्रों का एक विशाल नेटवर्क स्थापित किया। दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत की निशुल्क इलाज सुविधा का लाभ 58 करोड़ लोगों को मिल रहा है। श्री मोदी ने सभी देशों को जून में 11वें विश्व योग दिवस समारोह में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल शाम जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्स से फोन पर बातचीत की और उन्हें पदभार ग्रहण करने पर बधाई दी। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि चांसलर फ्रेडरिक मर्स से बातचीत में दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी और सुदृढ़ करने की प्रतिबद्धता की पुष्टि हुई। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज गोवा में मुरमुगाव बंदरगाह की नई परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। वे बंदरगाह प्राधिकरण के वरिष्ठ अधिकारियों और कर्मचारियों से बातचीत करेंगे। वे तटरक्षक बल के पोत पर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ भी वार्ता करेंगे। उपराष्ट्रपति कल केंद्रीय तटीय कृषि अनुसंधान संस्थान जाएंगे और संकाय सदस्यों तथा वैज्ञानिकों के साथ विचार विमर्श करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने कल वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई की। मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई और न्यायमूर्ति एजी मसीही की पीठ ने कहा कि संसद द्वारा पारित कानूनों में तब तक अदालतें हस्तक्षेप नहीं करती जब तक कि उनमें स्पष्ट रूप से असंवैधानिकता साबित न हो जाए। पीठ आज केंद्र सरकार का पक्ष सुनेगी। गृह मंत्रालय ने पद्म पुरस्कार 2026 के लिए नामांकन आमंत्रित किए हैं। नामांकन 31 जुलाई तक राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन किया जा सकता है। मंत्रालय ने कहा है कि सभी आवश्यक जानकारियां पोर्टल पर विशेष फॉर्मेट में दी जानी चाहिए। उसमें जिन व्यक्तियों को पुरस्कार देने का अनुमोदन किया जा रहा हो उनकी विशिष्ट और असाधारण उपलब्धियों का भी संदर्भ सहित स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। मौसम विभाग ने मुंबई और कोंकण क्षेत्र में अगले 4 दिन तक गरज के साथ तेज आंधी वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया है। रायगढ़, नासिक और पुणे सहित महाराष्ट्र के अन्य क्षेत्रों के लिए अत्यधिक तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अनुकूल जलवायु स्थितियों के कारण समय से पहले बरसात की शुरुआत हो गई है। मौसम विशेषज्ञों को इस बार अच्छे मानसून का अनुमान है। महाराष्ट्र में बेमौसम की वर्षा लगभग 2 सप्ताह से जारी है। कोलाबा वेधशाला ने 85.2 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की, जबकि सांताक्रूज निगरानी केंद्र से 47.4 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। आईपीएल क्रिकेट में आज मुंबई इंडियंस का सामना दिल्ली कैपिटल से शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।